आप वरिष्ठ भ्राता हैं, बहुत त्यागी तपस्वी अथक सेवाधारी हैं आप, योग के आपके बहुत गहन अनुभव हैं और वैसे ही आप सभी को अनुभव भी कराते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप समर्पित रूप से यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। कल आपने दादी जानकी के साथ अपना 50वां समर्पण दिवस भी मनाया है, तो उसके लिए हम भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वैसे आप यूपी के मुजफ्फरनगर से ज्ञान में आए, आपने बीएससी पढ़ाई की और उसके बाद 69 में आपने सेवाओं में अपना जीवन यहाँ 68 में समर्पित किया। सूरज भाई जी अपने संकल्प शक्ति से और राजयोग के द्वारा सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान कार्यक्रम जो आजकल टेलीविजन पर आता है वो भी सभी के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। ओम शांति मीडिया में मन की बात में भी आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन जो विशेष सेवा आपने बाबा के बेहद यज्ञ में की है समर्पित होने से, वो है बाबा का, शिव बाबा का, शिव भोलेनाथ का बेहद का भंडारा आपने वर्षों से संभाला है। पहले पांडव भवन में रहे, फिर ज्ञान सरोवर में और शांति वन में भी आप ये बेहद की सेवा के निमित्त रहे हैं। अभी हमें तपस्या विषय पर आप स्पष्ट करेंगे कैसे हम अपनी तपस्या को, अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं। आप सभी को मालूम हो ये वर्ष समाप्ति वर्ष के साथ साथ तपस्या वर्ष भी है, तो भाई जी उस पर स्पष्ट करेंगे। और आप ब्राह्मणों की स्व उन्नति के लिए देश विदेश में जाकर के भथियां कराते रहते हैं, स्वयं भी तीव्र पुरुषार्थी हैं और सभी के तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए या पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए वो विधियां, वो उन्नति की प्रेरणाएं सबको देते हैं।
ओम शांति। खुश हैं बहने सभी मधुबन में आके? पहले भी रही यहाँ कभी? आए पहले रहे ऐसे? बहुत अच्छा। भाई लोग खुश हैं या ठंड लग रही? ठंड लग रही, गर्मी से आप आए हैं। योगियों का मौसम है ये, ऐसे मौसम में एकाग्रता बहुत अच्छी होती है और चिंतन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन इससे शांत होता है। गर्मी बहुत हो तो वैसे बेचैनी सी रहती है, मन की सारी शक्तियां उधर लगी रहती हैं। तो हमें अपने जीवन को बहुत सहज योग युक्त करना है। आज मैं इस टॉपिक को दूसरे ढंग से लूंगा, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ क्लास में बहुत चलता है भट्टी में। हमें अपने जीवन को ही योग युक्त बनाना है। कुछ योग बैठकर भी करना है और कुछ कर्म में, चलते फिरते और कर्म में करना है। तो पहले मैं सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, किस किस का योग अच्छा लगता है? हाथ उठाएंगे जो योग से संतुष्ट हैं। अच्छा, बाकी का मन भटकता होगा, उसे रोकना है। अब कैसे रोकेंगे बोलो, भटकते मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? याद में ही तो भटकता है, कैसे करेंगे कंट्रोल? योग तो लगता नहीं ना, योग से कैसे करेंगे बोलो, कैसे? ये कला सबको सीख लेनी है कि मन की भटकन को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आजकल ये भटकन दिनों दिन बढ़ती जा रही है लोगों में। कोई व्यक्ति मिलने आया, अभी भी दोनों आए, आयु बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा भी है 60 के आसपास, पर मन से दुखी हैं। कोई दुख नहीं, पैसा है, दो बच्चे अच्छी जॉब में, परिवार सब अच्छा, लेकिन दुखी अपने संकल्पों से। ये बहुतों का हाल हो गया है। हमें अपने संकल्पों की सृष्टि को सुंदर बनाना है। क्या हम सोचें और क्या ना सोचें, ज्ञानी बनकर इतना तो हमें पता ही है ना? या नहीं पता? पता है। दुनिया में तो ये हाल है कि लोग सारा दिन व्यर्थ सोचते हैं और उन्हें इसका पता नहीं है। हम व्यर्थ सोचेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने कहीं व्यर्थ सोचा है। योग में आप बैठे हैं और जरा सा परचिंतन चल जाए तो योग का क्या हाल होता है? सारा सुख चला जाता है। मैं जब यहाँ था 69, 69, 70 सोचा करता था योग हमारा सबसे बड़ा आनंद। ये बीच में कौन आ गया जिसने आनंद छीन लिया? इसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। हमारे आनंद की कितनी वैल्यू है। ये बीच में ये आधे मिनट के लिए भी कोई आ गया, खुशी खत्म, परम आनंद खत्म, गहन शांति खत्म, विचलित होता है मन। तो हमें अपने सोच को ठीक करना है। जो जितना अच्छा सोचेंगे उनका जीवन उतना ही अच्छा होगा। सीधी सी बात, कोई लंबी चौड़ी नहीं। निगेटिव सोचना आदत, पॉजिटिव सोचना अपने हाथ में। समझती है ना बहने पॉजिटिव को? अच्छा सोचना, सदा अच्छा सोचना, हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। अच्छा सोचना, कोई भी घटना जीवन में हो गई है, व्यक्ति उसे याद करके परेशान रहता है, ज्ञानी क्या सोचेंगे? पूरा हो गया। अब उसके आधार पे हम अपने भविष्य को मैला क्यों करें? वो तो पूरा हो गया, कल के बाद आएगा, तब तक तो अपने मन को उससे मुक्त करें। ज्ञानी ऐसे सोचेंगे। जो ज्ञानी नहीं है वो सोचेंगे क्यों हुआ, किसने किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनेक क्यों कैसे हो जाएंगे। तो हम अपने सोच को अच्छा करेंगे, योग अच्छा, जीवन अच्छा। योग की साधनाओं में, मूल्यों में हम रोज सुनते हैं और सदा ही सुनते रहते हैं, आत्मा समझो अपने को। इसका अर्थ है जैसे अब हम शरीर हो गए हैं ना, सारा संसार क्या हो गया? नेचुरल है ना, हमारी भाषा में हम इसको देह अभिमान कहते हैं। उन्हें पता नहीं शरीर में ये हूं। ऐसे ही हम आत्मा हो जाएं। ये भान, ये स्मृति बढ़ती चले, मैं ये नहीं हूं, ये हूं। आज क्या था मुरली का सार? घर, बोलो घर, जाना है। सार वही था, केंद्र वही था। मैं तुम्हें लेने आया हूं, ममत्व छोड़ो, तुम्हें जाना है। क्या हमें याद है कि हमें जाना है? ये एक ही बात हमें अनेक बंधनों से मुक्त कर देगी। बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, स्मृति आना, इससे हम योगयुक्त हो जाएंगे। स्मृति आ जाए, कितना सुंदर आज बाबा सुना रहे थे, खेल बुरा हुआ, अब तुम्हें देह छोड़ना ही है, 84 जन्म पूरे हो रहे हैं, अब चलना है। क्या हमें याद आता है? पूछें सभी अपने से गहराई से, क्या हमें याद आया कि अब ये खेल पूरा हुआ, नाटक पूरा हुआ, वस्तु उतारने हैं, चलना है। पूछो सभी अपने से, ये कहने की बात नहीं, केवल याद आ जाए। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है, ये खेल खेला है, अनेक बार हम घर गए हैं, याद आने लगे, इस चिंतन होने लगे, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए चिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे। देखो बुद्धि में क्या भरता है, ज्ञान, विवेक। जिसने बुद्धि में इधर उधर की बातें भर ली हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। इसलिए पहली चीज, अपने संकल्पों को चेक करेंगे आज सभी, क्या मुझे अच्छी तपस्या करनी है, सोचेंगे। ये किसी और के कहने से नहीं होगा, ये आत्मचिंतन से होगा। नहीं तो रोज मुरली सुन रहे हैं, भूल रहे हैं, सुन रहे हैं, छूट रही है। और इस समय माया अति प्रबल रूप से काम कर रही है। मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से सबको ये बात कहता आता था बाबा की, आज आपको सुना देता हूँ, कईयों ने सुनी होगी। बाबा कहते थे, अव्यक्त बाबा ने कह दिया था, विनाश काल में प्रकृति के पांचों तत्व और माया के पांचों विकार फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। मैं देख रहा हूं माया के विकार फुल फोर्स से आक्रमण कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में लाखों बाबा के बच्चे विदाई ले गए माया के वश, 40 साल यान में चलकर भी, गृहस्थी 20 साल, कुमार ज्ञान सेवा में रात दिन लगा के, भाग्य पूरा हो गया, अब हम चले अपने घर। क्यों? उत्तर देना है आपको, ताकि आप सब जो बैठे ये आपके साथ ना हो। क्यों? निश्चय पूरा है, भगवान आया हुआ है, यही मार्ग सत्य है, भाग्य बन रहा है। बोलो। हाँ और बोलो बोलो बोलो, सब जानते हैं, इसमें माताएं भी गई हैं बहुत। नहीं, ये संग दोष आदि सेकंड बात, वासनाओं को तब तक जीता नहीं जा सकता जब तक रोज 4 घंटे योग न हो। ये जा वही रहे हैं जिन्होंने सेवाएं तो बहुत की पर कभी अमृत वेले का सुख नहीं लिया। सवेरे भगवान भाग्य बांटता है, वो पता ही नहीं है, 6 बजे ही सो के उठे, क्योंकि सेवा में 12 बज जाते थे, 12 बजते नहीं हैं, बजाए जाते हैं। ध्यान देंगे इन बातों पे। माताएं चाहे अपने घर का काम काज 8 बजे 9 बजे सब खत्म करके फ्री हो जाएं, और चाहे 12 बजे तक लगी रहें। कौन काम कितनी चुस्ती से करता है, काम करने की प्लानिंग क्या होती है। एक माता खाना बनाने में 2 घंटे लगाती है, पहले आराम से सब्जी काटेगी मजे से, फिर उसको पानी में डाल देगी, फिर सोचेगी दाल भी तो बनानी है, भिगोई तो है ही नहीं, चलो भिगो देती हूँ, फिर आटा भी तो बनाना है, आटा बनाएंगी धीरे धीरे, फिर उसको रखना भी तो है थोड़ी देर। 3 कामों में 1 घंटा बीत गया। और कई कुमार हमारे ऐसे चुस्त हैं, 1 घंटे में खाना बना के खा के सफाई करके काम पे भी चले जाते हैं। काम करने में कौन कितना चुस्त है, योगी बनने का कितना रस है, उसका महत्व कितना पता है। महत्व बहुत ध्यान देना आपको इस बात पे, योग के महत्व को बहुत लोग जानते ही नहीं। चित्रों में तो दिखा दिए, हंस का चित्र है ना, आठ पंख लगे, पंखों के पास आठ लिखे हुए, योग से ये होगा ये होगा, लेकिन योग का सुख जिसे मिल गया हो वो तो योग करेंगे ही, वो तो एक काम छोड़ेंगे योग करेंगे। तपस्या अच्छी होगी, ध्यान से सुन लेंगे, समस्याएं नहीं रहेंगी। ये लिखा हुआ नहीं है चित्रों में। तपस्या बहुत अच्छी हो गई, परमात्म साथ का अनुभव होगा, उसके साथ रहते हम, वो हमारे साथ रहता है, उसकी शक्तियां हमारे साथ रहती हैं, हम अकेले नहीं हैं, ये अनुभूति होती रहेगी। और योग नहीं तो मैं अकेला हूं, क्या करूं, समस्याएं बहुत आ गई, अब कैसे इनको पूरा करें, मुरली सुनने जा नहीं सकते, काम बहुत हो गया है, समस्याएं बहुत हो गई, तबीयत खराब हो गई है। मैं सुना रहा हूं आजकल, संकल्पों की सृष्टि पे मुरली चली ना संडे को, एक व्यक्ति को थोड़ा बुखार है, उसे सोच लिया है आज तो बुखार है, मुरली में कैसे जाएंगे, सो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति सोचता है मुरली में जाने से बुखार ठीक होगा, चलो वहां जाता है, वो पसीना होता है, बुखार उतार के घर आता है। एक व्यक्ति सोचता है समस्याएं बहुत हैं बाबा, सवेरे नहीं उठ सकती। दूसरा सोचता है सवेरे उठेंगे, बाबा की दुआएं मिलेंगी, समस्याएं भाग जाएंगी। संकल्पों का ही खेल है ना, संकल्प ही मनुष्य को ताकतवर बना देते हैं, संकल्प उसे बेड पे सुला देते हैं। संकल्पों में बहुत ताकत है, अपने संकल्पों को स्ट्रांग करें और अपने से पूछें, क्या मैं तपस्या करना चाहती हूं। माताएं पूछें अपने से, टाइम नहीं है ये कोई नहीं मानेगा, बाबा नहीं सुनेगा, बहुत टाइम था वेस्ट किया है, टीवी देखने के लिए टाइम था, मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक किस उसके लिए टाइम था, सारा फेस बिगाड़ लिया अपना, मेरे लिए टाइम नहीं था, था वैल्यू नहीं थी। समझ लें, जिनके पास योग की शक्ति नहीं है आने वाले दिनों में बहुत कष्ट होगा। हमें योग इसलिए भी जरूरी है, अब जरा ध्यान से सुन लेंगे कान खोल के। माताओं के पास परेशान लोग आने लगेंगे, मेरे सिर पे हाथ रख दो परेशानी दूर हो जाए, और आपने हाथ भी रख दिया और उनकी परेशानी बढ़ गई तो क्या होगा, कहेंगे ये तो हम जैसे ही हैं भाई, और कहीं चलो। आपके घर लोग आएंगे, कहेंगे अपने घर का पानी पिला दो, चित शांत हो जाए। ऐसी तपस्या करनी है, दृष्टि से बहुत सेवा होगी, लोग आएंगे दृष्टि दो हमें, चिंताओं में हम तो दबे जा रहे हैं, अंधकार आ गया है जीवन में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पावर अपने में भरनी पड़ेगी। मैं बहुत साल से एक बात कहता आता हूं और अब आपको बता दूं, माताओं को तो उन चीजों का ज्यादा पता नहीं, पढ़े लिखे भाई जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन इंग्लिश में जिसका नाम है WHO, जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया का जो स्वास्थ्य है ना, दवाइयां ये वो, उसकी शायद दुनिया में एक विशेष संस्था भी है, उसने डिक्लेयर कर दिया। मैं 2015 से ये बात अपनी हर क्लास में कहता आया हूं कि 2020 से इस संसार में सबसे बड़ी महामारी होगी डिप्रेशन। डिप्रेशन माना उदास, मन ही नहीं लगता, न खाने को मन, न काम करने को, न डांस करने को, न टीवी देखने को, न मुरली सुनने को, न योग करने को, गहरी उदासी, अवसाद कहते हैं इसे इंग्लिश में, डिप्रेशन। बढ़ता जा रहा है संसार उस ओर। भगवान ने तो 7 साल पहले कह दिया था, क्या कहा था पता? मैं भी कम सुनाता हूं क्लास में, सब थोड़ा खराब है। विनाश काल में ये सारा संसार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएंगे लोग। आपके जिंदगी जनसंख्या कितनी है? 2 लाख है। अब आप समझ लें, ये 2020 से शुरू होके 25 तक संसार की ऐसी स्थिति हो जाएगी जो इन 2 लाख में से 1 लाख लोग रात को सोएंगे नहीं, और वो आपको याद करेंगे या आपके कमरे में आ जाएंगे, हमें सुलाओ। माताएं सुलाती हैं बच्चों को, बच्चे रो रहे हो थप थपी देके सुला देती हैं या नहीं? इस थप थपकी से क्या मिलता है बच्चे को? प्यार की वाइब्रेशंस, रोता हुआ बच्चा सो जाता है ना। ऐसे ही आपके पास कम से कम 10 महान योगी होने चाहिए जो अपने घर बैठकर वाइब्रेशंस देकर सबको सुला दें। सबसे बड़ी सजा होगी न सोना। एक माता आई मेरे पास 2 दिन पहले ही, मैं 30 साल से सोई नहीं। उसमें क्या है, मनुष्य सोता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ब्रेन, ये दिमाग इतना एक्टिव होता है कि उसे लगता है वो सोया नहीं। एक योगियों की स्थिति होती है, वो थोड़ा ही सोएंगे उन्हें लगेगा बहुत ज्यादा सो गए, फ्रेश। यह नींद ऐसी हल्की होगी उन्हें लगेगा सोए नहीं, योग कर रहे थे, वो सुखदाई चीज है। और ये ऐसी है जो कष्टदाई है बहुत, शरीर की शक्ति को भी नष्ट कर देती है तो ब्रेड की शक्ति को भी, मनुष्य का जीवन नष्ट कर देती है। बोलो ऐसे 10 महान योगी मिलेंगे इस सभा से? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। सोच लो कौन ये विश्व की बड़ी सेवा करेगी। इसमें हमें अपने पूर्वज स्वरूप को जागृत करना होगा। हम पूर्वज हैं, पालनकर्ता हैं, हमारे वाइब्रेशंस का इफेक्ट पूरे कल्प वृक्ष में फैलता है। जिंद तो छोटी जगह हो गई, सारे संसार में फैलेगा। योगी बनना है, बोलो बनना है, बनना है, है इरादा? नहीं तो क्या होता है? मैं बहुत पहले से सोचता आता था, जब मैंने योग के बहुत ज्यादा अभ्यास किए, बाबा की मुरली में आया, बच्चे 8 घंटे नींद कर लो, 8 घंटे काम कर लो, 8 घंटे मुझे याद करो। सुनिए बात, जब आप ये सुनते हैं तो अंदर में क्या होता है? खुशी होती है। ये खुशी की बात नहीं, ये तो करने की बात है। क्या होता है अंदर में? अब देखो क्या होता है, आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं आपके अंदर क्या होता है। गलत मैं कहूं तो बता देना मुझे। सुना 8 घंटे रोज मुझे याद करो, अनेक बाबा के बच्चे अंदर ही अंदर उत्तर दे देते हैं, ये काम अपना नहीं है, अपने से नहीं होगा, हम तो ग्रस्त में रहते हैं, दीदियां करें, समर्पित है ना, उन्हें कोई काम नहीं। और वो कहती हैं हम तो सेवाओं में बहुत बिजी है, सबसे ज्यादा काम हमें है। बहुत गिनी चुनी आत्माएं सोचती हैं भगवान कह रहा है करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, 4 तक पहुंचेंगे, 5, 6 कुछ तो करेंगे। आज बाबा की लास्ट लाइन थी, अंत तक 8 ही विन करते हैं, विन माना जीत विजय, फिर 108 100 फिर 16,000। तो ये हमारी रेस है याद की, आज बाबा ने यही तो कहा विजय माला में आना है तो याद की रेस करो, ढीले नहीं होना है। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज आपके सामने रख देता हूं, जिनको योगी बनना हो ये आपको सोचना है, 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठो। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आपसे होगा नहीं। कम से कम 3 बार अवश्य, भाइयों के लिए माताएं 4 बार, घरों में जो है भाई लोग काम पर हैं 3 बार अवश्य। कुछ अच्छे संकल्पों के साथ बैठो, ये नहीं चलो 10 मिनट हैं बाबा को याद कर लेते हैं, ये नहीं। अब 10 मिनट मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इस स्मृति में स्थित होकर मुझे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाने हैं, संकल्प लेकर बैठो। 10 मिनट मुझे ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर चारों ओर बिखेर देनी है। बार बार याद भी करो इसे, 10 मिनट में 10 बार याद कर जाओ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। देखो ये सरल विधि मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, देखो उसे, फिर उसकी किरणें आ रही हैं, मेरे अंग अंग से फैल रही हैं। 1 मिनट लगाओ इसमें, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार योग में बैठो अपने घर में। मुझे अभी 10 मिनट अपने पूरे घर को पवित्र वाइब्रेशन से भर देना है, फिर वही अभ्यास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं, पूरा घर पवित्र किरणों से भर गया है। चले 5 मिनट ये दोनों अभ्यास करेंगे। संकल्प करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे निकली शक्तियों की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, आत्मा देखें अपने को मस्तक के मध्य में, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, चारों ओर किरणें फैल रही हैं, ऊपर परम धाम में ज्ञान सूर्य बुद्धि को स्थिर कर दे उन पर, ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं, परमधाम में पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणों की, मेरे ऊपर जैसे कि बरसात हो रही है, परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है, अभ्यास की बहुत जरूरत है। योग उनका ही सफल होता है जो बहुत अभ्यास करते हैं, और जिन्होंने इसे सहज मानकर छोड़ दिया है, सहज है बाबा को याद ही तो करना और क्या है, वो योगी नहीं बनते। अभ्यास टाइम निकालेंगे 4 बार, कर सकेंगी बहने? कौन कौन करेंगे? कर सकेंगे? नहीं करना है, नहीं तो समस्याएं आपके चारों चक्रव्यूह बना देंगे, उसे निकलना मुश्किल होगा, फिर तो मृत्यु है उसमें, अभिमन्यु की तरह। अब चक्रव्यूह बनवाना है या रास्ता क्लियर रखना है, अभ्यास की बहुत जरूरत है। योग उनका ही सफल होता है जो बहुत अभ्यास करते हैं, और जिन्होंने इसे सहज मानकर छोड़ दिया है, सहज है बाबा को याद ही तो करना और क्या है, वो योगी नहीं बनते। अभ्यास टाइम निकालेंगे 4 बार, कर सकेंगी बहने? कौन कौन करेंगे? कर सकेंगे? नहीं करना है, नहीं तो समस्याएं आपके चारों चक्रव्यूह बना देंगे, उसे निकलना मुश्किल होगा, फिर तो मृत्यु है उसमें, अभिमन्यु की तरह। अब चक्रव्यूह बनवाना है या रास्ता क्लियर रखना है ये अपने हाथ। योग नहीं होता तो अनेक व्यर्थ संकल्प हमारी चारों जाल और जंजाल बना देते हैं, और योग एक अग्नि है जो उन्हें काट देती है। बाबा का आह्वान किया करें अपने घरों में 5 बार, बहुत सुंदर अनुभव होंगे, अति आनंदकारी। जब ये योग करें तभी कर लें, योग के शुरू में कर लें, अलग टाइम की जरूरत नहीं। बाप दादा दोनों को बुलाओ और देखो दोनों उतरते उतरते आपके घर में आ गए। ब्रह्मा बाबा मस्तक में शिव बाबा आपके घर में खड़े हैं, किरणें फैल रही हैं उनसे, पूरा घर उनकी किरणों से भर गया, दृष्टि दे रहे हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं, हाथ पकड़ो उनका, दोस्त बनाओ, घूमो उनके साथ, भिन्न भिन्न 5 बार में 5 तरह के काम करो। जैसे कभी अनुभव करो उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया आते ही, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। कभी अनुभव करो उनकी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी, छत्र छाया बना दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी बाबा पूरे घर में घूमने लगे, कभी डांस करने लगो बाबा के साथ, रास, दोनों हाथ पकड़ो, रास करो, आपके घर के बच्चे बहुएं भी खुश हो जाएंगी, आज क्या हो गया माता जी को, अकेली नाच रही है, डांस करो, उनको नहीं दिखेगा दूसरा भी कोई है, वो आपको दिखेगा केवल। भोजन बना रहे बाबा को बुलाओ, आओ मदद करो हमें, आदत डाल दो। कितना सुंदर अवसर बाबा ने हमें दिया है, मैं आपको बाबा का उमावाक सुना दूं, पक्का कर लेना चाहिए, सेंटरों में भी लगा रहता है, आप भी अपने घर में लगाया होगा, जब भी मुश्किलात आए क्या कहना, मेरे बाबा आ जाओ, क्या करो, मदद करो। अगली लाइन क्या है लास्ट, ये बात भूलना नहीं है, लिख लो जिसको भूलती हो, बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसे सुंदर बात और क्या कह सकता है हमें, मुझे मदद करनी ही है, ये मेरा काम है। एक बार तो कहा था भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता, तो हमें बुला लेना चाहिए। बस आह्वान करो आ जाओ, और कुछ करना नहीं है, न अगरबत्ती जलानी है न दीपक जलाना है। भक्ति में तो क्या क्या रस्में हैं, नहीं तो कहते हैं तुम्हारी विधि पूर्वक नहीं हुई, इधर कोई विधि नहीं हमारा है ना, आ जाओ। आगे मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। मुझे इसमें श्री कृष्ण अर्जुन पांडवों की बात बहुत अच्छी लगी। अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने सारी सेना, क्यों मांगा था बताओ, भाई बताएंगे, सब कुछ होने लगेगा, उसकी राय काफी है, कहा मैं लड़ूंगा नहीं, नहीं लड़ने की जरूरत नहीं, राय। भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध हो रहा है, उसकी राय से ही तो दुर्योधन मरा है। दुर्वासा ऋषि आ गया अपनी शिष्य मंडली के साथ, उसकी राय से ही तो जान बची, नहीं तो श्राप देता। राय, राय बड़ी चीज होती है ना। आप आबू में चले गए पैदल घूमने, राह भटक गए, रात है, कोई राह बता दे के यही चल जाओ, देखो यही तो है, कितने खुश होंगे, उसको धन्यवाद देंगे। राह, राय बहुत बड़ी चीजें हैं। बाबा को बुलाया करें। एक सुंदर बात जो अभी अभी हमने सुनी, मैं आपको भी सुना देता हूँ, मुझे बहुत भा गई, हालांकि मैं उस चीज पे पूरा जीवन अच्छा ध्यान दिया है, पर इस बार एक बड़े वैज्ञानिक के मुख से सुनी। मैं हैदराबाद गया, अभी हफ्ता 10 दिन हुए, 2 बड़े प्रोग्राम थे वहाँ, संख्या में बड़े नहीं पर दूसरी तरह से बड़े। एक वैज्ञानिकों का था, 70 वैज्ञानिक आए, 70 बहुत बड़ी संख्या वैज्ञानिकों के लिए, 10 तो डायरेक्टर थे, मैं ही था अकेला बोलने वाला इधर से, 2 डायरेक्टर भी बैठाए थे, बेचारों को साइंटिस्ट हैं, उनको तो इतना कुछ बोलना नहीं आता, पर ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट लोग धर्म और अध्यात्म ज्ञान और योग को मानते नहीं हैं, वो तो पुजारी होते हैं कई तो, उनमें से देवी के आगे जाके खड़े हो जाते हैं हाथ। एक बड़ा साइंटिस्ट और आया, जब भारत का आर्यभट्ट बना, सबसे पहले सैटेलाइट छोड़ा था ऊपर आर्यभट्ट, तब जो डायरेक्टर था, इसरो है अहमदाबाद में वैज्ञानिकों की संस्था, वो आया था, 1 मास भी नहीं हुआ होगा, अब सन्यासी जैसा रहता है, तो सुना रहा था। जब हमने बना दिया तो मैंने रक्षा मंत्री को कहा, साहब ये जो इसरो है, मुझे पहले देवी के, इसरो नहीं आर्यभट्ट, मुझे पहले देवी के मंदिर में ले जाना है, आपकी आज्ञा चाहिए। देखो बड़ा वैज्ञानिक जिसने भारत का पहला आर्यभट्ट बनाया था सैटेलाइट, अब वो मंत्री भी धार्मिक था, उसने कहा भाई इसका मॉडल बना लो और देवी के आगे रखाओ, मॉडल बनाया उसका प्लास्टिक का, देवी को दिखाया, जैसे अर्पित किया, सफल हुआ। तो वैज्ञानिक ऐसे होते हैं, तो सुना रहा था, उसको बोलने को कहा, मेरे बात बोल रहे थे सब, फिर तो धन्यवाद ही देते हैं बेचारे, हाँ भाई हम भी कुछ करेंगे। कहा पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अंतिम यात्रा पे चले हिमालय स्वर्ग की ओर, सबका छूटा। युधिष्ठिर पहुंचे स्वर्ग में तो देखा आगे आगे दुर्योधन शकुनी दुशासन कौरव सब बैठे इंद्र के साथ। इसने पूछा हमारे भाई कहाँ हैं, ये पापी सारे अपने आगे बैठा दिए और धर्मात्मा पांडव कहा कहीं बैठे हैं, देवदूत को कहा ले जाओ भाई ना उनके पास, ले गए उनके पास, पीछे बैठे थे। आया गुस्से में युधिष्ठिर, पापियों को आगे बैठाया है, अधर्मियों को क्यों? बस ये है काम की बात। कहा युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो लेकिन अब तक तुम्हारे मन से नफरत नहीं गई, अब तो दुर्योधन वहां नहीं है, अब ये स्वर्ग में है, यहाँ नफरत नहीं चलती, इसलिए थोड़ी तपस्या और करो, नफरत को मिटाओ, फिर आओ। तो ये दिखाया, ये ध्यान की बातें हैं, साक्षात्कार केवल। तपस्या करता है युधिष्ठिर, नफरत खत्म होती है, सीन बदल गया, पांडव आगे हैं, कौरव दिखाई नहीं दे रहे। तो जब तक मनुष्य के मन में नफरत का जरा भी अंश है वो योगी नहीं बन सकते, याद रखना है सबको। इसलिए अपनी वृत्तियों को शुद्ध करेंगे, भावनाओं को श्रेष्ठ बनाओ। इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे तंग किया, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, ये सब नहीं, वो न होते तो हम, बोलो, बाबा के पास ही ना आते। बहुत तंग किया किसी ने, कल की एक सुनो, आपके पड़ोसी एक माता, कहा जब से मेरी शादी हुई ससुराल वाले यही कहते थे इसमें तो भूत रहता है, ये है वो है, बच्चे भी हो गए, मुझे बहुत तंग किया उन्होंने, अभी तंग करके घर से निकाल दिया तो मैं सेंटर पे आई, अभी 4 मास से ज्ञान सरोवर में हूँ। मैंने कहा तो बच्चे याद आते? नहीं, लड़कियां थी 3, सरपंच ने उनकी शादियां करा दी, 5-5 लोगों को बुलाया बारात में, शादी करा दी, लड़का है वो पढ़ रहा, मैं बंधन मुक्त हूँ, मुझे किसी की याद नहीं आती। मैंने कहा दुखी होती हो? अब 4 मास से ज्ञान सरोवर में सेवा कर रही, थोड़ी रौनक तो आई गई बेचारी में, लेकिन जीवन भर सताई हुई आत्मा, उसकी खुशी मर चुकी, उसके जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई उसे प्यार किया हो जीवन में ऐसा उसको लगा नहीं। घर वालों ने भी कह दिया हमारा पूरा हो गया काम, कहीं भी जाओ, घर पियर घर में भी नहीं रखा उसको। तो मैंने सोचा अब तुम याद करो, तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। उन्होंने धक्के दिए और धक्के देके कहाँ भेज दिया, तो अच्छा हुआ या बुरा? तब हंसी हो, शायद जिंदगी में पहली बार हंसी होगी कि कितना अच्छा हुआ सचमुच। तो एक सुंदर बात याद रखेंगे, बाबा की मुरली में है, कुछ दिन में आप सुन लेंगे उसको, 15 दिन में। बाबा हमारे भाग्य की महिमा कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं, तुम इतने भाग्यवान हो कि तुम्हें भाग्य में स्वयं भगवान मिले। किसी को भाग्य में बच्चे अच्छे मिलते हैं, किसी को पैसा मिलता है, तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, और हमें मिले, ये हमारा भाग्य है। तो अपने भाग्य को उठते ही याद किया करेंगे तो सवेरे का समय बहुत सुंदर हो जाएगा। सवेरे को महत्व देना है। माताएं तो उठती होंगी सवेरे, उठती हैं सभी, भाई लोग ठंडे होंगे थोड़े, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, डरना नहीं, भाई लोग थोड़े ठंडे रहते हैं, देर तक काम किया, बिजनेस है, 12 बजे सोए, उठ नहीं सकते, सब इस समय को महत्व दें। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें, बाबा से बातें करें। अभी मुरली में 3-4 दिन पहले आ गया है, सवेरे उठ के ज्ञान का चिंतन करो, बाबा से रूरियन करो, सुस्ती भी खत्म हो जाएगी, फिर योग बहुत अच्छा लगेगा। ये बातें ज्ञान की हैं, कितना सुंदर भाग्य मिला है मुझे, सोचने की बात है। अभी जो मैंने बात सुनाई थी, एक भाई आया था जो बहुत बेचारा मन से अति कमजोर डरा हुआ, मैंने कहा सेंटर पे क्यों नहीं जाते, युगल उसकी जाती है 1.5 साल से, कहा ज्ञान तो मैंने भी लिया पर इस डर से नहीं जाता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, मैंने कहा अब क्या कहते हैं लोग तुम्हें, जब हाथ में डंडा लेके चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, ऐसा लगता है 100 लोगों ने मिलके पीट दिया है तुम्हें, अब लोग कुछ नहीं कहते। मैंने उसको याद दिलाया, द्वापर युग से अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो जाना होगा, जो भगवान के मार्ग पर चला, संसार में किसी ने उसे साथ दिया, ये तो प्रथा है संसार की। साईं बाबा जब थे लोग पत्थर मारा करते थे, भूखा ही रहा बेचारा कितनी रात, खाना भी नहीं देते थे, ईंट का तो तकिया बनाया हुआ था, और आज तो ऐसा संसार ऐसा ही है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है, बाबा क्या कह रहा है, हम क्या कहेंगे अपने को, अगर हमने भाग्य न पाया तो हम क्या कहेंगे अपने को, ये सोचना है। एक चीज और कहना चाहता हूँ आपको, ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है तपस्या का, हमें 5-6 तरह की तपस्याएं करनी है, इशारे में लिख लें। आत्माभिमानी होने की तपस्या एक, इस पे चर्चा कर लेना। आत्मिक दृष्टि की तपस्या, तीसरा संपूर्ण प्योरिटी की तपस्या, चौथा बुद्धि को स्थिर करने की तपस्या, पांचवा स्वमान की तपस्या। देखिए योग की ये सबसे सुंदर स्थिति है, सुना आप सबने है, मन बुद्धि को जब चाहो, जहाँ चाहो, जितने जिस स्वरूप पर चाहो, जितना समय चाहो, स्थिर कर सको, ये बुद्धि की स्थिरता है। ऐसे योगियों को टाइटल मिलेगा योगेश्वर, बाबा की महावाक्य 2 साल पहले के अव्यक्त कुंडली में। तो मेहनत करनी है अपने से, यही समय है, जन्म जन्म की मेहनत से छूट जाएंगे, सफलता आगे पीछे घूमेगी, भगवान हमारा है ये अनुभव होने लगेगा रोज, वो साथी है ये कहने की बात नहीं रहेगी, फीलिंग होगी साथी है वो हमारा, हम अकेले नहीं है। तो मैं आपको कुछ कहूंगा स्वमान की साधना पर, स्वमान, आप स्वमान के 10-12 पॉइंट्स लिख लेना और देखो उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट रोज दे देना अपने को, बहुत सुंदर ये तरीका है। पहला स्वमान हमारा है मैं एक महान आत्मा हूं। अब ये साधना आपको लिख के करनी है, आपने लाइन लिख ली मैं एक महान आत्मा हूं, अभी संकल्प को अपने अंदर भेजना है, अंतर मन में समाना है इस संकल्प को। अब इसको पढ़ेंगे दोबारा, यही सत्य है कि मैं महान हूं। तीसरी बार फिर, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। चौथी बार भी करेंगे, 2 युग मैंने देव स्वरूप में बिताए, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। लक्ष्य यह है कि हम उसको स्वीकार कर लें। स्वीकार करना कैसा होता है, मैं तो बूढ़ी हूं मेरे से काम नहीं होता, स्वीकार कर लिया ना। एक व्यक्ति 90 साल का है, बूढ़ा है ही नहीं, सब काम खुद करता है, एनर्जेटिक है, संकल्प स्वीकार कर लो मैं महान हूं, महान बन जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये हमारा दूसरा सबसे पावरफुल सोमान, इसको भी ऐसे ही अपने अंदर भेजो, अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इसको समाने दो। बाबा के बने उसने अपनी सारी शक्तियां दे दी, आज भी मुरली में बहुत था, मैं सर्वशक्तिवान हूं तुम्हें अपनी शक्तियां देता हूं। बाबा ने सिर पे हाथ रखा है मेरे और अपनी शक्तियां मुझे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अंदर जाएगा और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली होगा, खुद ही खुद होगा, हमें कुछ करना नहीं है, संकल्प करने हैं, स्मृतियों से हमारी स्थिति बन जाएगी। ऐसे ही स्वमान है, मैं पूर्वज हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, बारह लिख लेना आप और उनको अपने अंदर भेज देना, बस मैं ये हूँ। एक साथ अनेक गुण, अनेक शक्तियां, अनेक योग्यताएं जीवन में आने लगेंगी, ये पुरुषार्थ का सहज तरीका है। ऐसे ही 10 मिनट आत्मविमानी स्थिति के अभ्यास के लिए देना, मैंने 10 मिनट कहा ना चार बार, 10 मिनट स्वमान के लिए, 10 मिनट आत्मिक स्थिति के लिए, 10 मिनट बाबा से बुद्धि योग लगाकर भिन्न भिन्न तरह की किरणें फैलाना, 10 मिनट उसका आह्वान करके 10 मिनट उसके अपने पास रखो, 10 मिनट न रखा जाए 3 मिनट रख लो, बाकी समय में और कुछ अभ्यास कर लो, आत्मविमानी होने का अभ्यास। आत्मा के 7 गुण हैं, आप सब जानते हैं, माताओं को पता है या भूल गई कोर्स में जो सिखाया था? मैं आत्मा, शांत, अब स्वरूप को छोड़ दो, मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, 3-3 बार आत्मा देखेंगे अपने को यहाँ, मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, मेरा चित्त शांत है, शांति बढ़ेगी, नहीं तो कहते आ रहे शांति बढ़ी नहीं, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, बिल्कुल सच्चे दिल से स्वीकार करो, मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गई, सुख बढ़ने लगेगा, मैं परम पवित्र हूँ, मेरी मूल स्थिति संपूर्ण पवित्र है, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, बढ़ जाएगा। 10 मिनट देना चिंतन और मैं आत्मा हूँ अपने स्वरूप को देखना, प्योरिटी को बढ़ाने के लिए मैं भाइयों को और बहनों को सीधी सी एक विधि बताता हूँ, पानी चार्ज करके पिएंगे, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, विशेष रूप से सोने से पहले उठते ही 3 बार और 5 बार जरूर, 2 बार तो भूलना ही नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी केवल आत्मा में नहीं है, किसमें है, शरीर में भी पूरी पूरी है, इसलिए शरीर को भी पवित्र बनाना, ब्रह्मा भोजन से बनेगा, चार्ज पानी से बनेगा, और बहनें सभी जो घर में भोजन बनाती हैं, आप ध्यान दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा का आह्वान करो अपने किचन में, ये अभ्यास करो। कई माताओं को समस्या होगी, हमारी बहू खाना बनाती है, हमें खाना ही पड़ता है, नहीं तो घर में झगड़े होंगे, हमारा आना भी बंद हो जाएगा, ये समस्याएं हैं, आप वहां बैठ कर ये अभ्यास कर लो, सब्जी काटने लगो, बैठो कुछ काम कर लो वहां, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, 100-200 बार याद कर जाओ, कोई भोजन बना रहा है, ये किरणें भोजन में समा जाएंगी, भोजन पवित्र हो जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कुछ माताओं की ये समस्या रहती ही है घरों में, उनसे इस तरह आप बाहर निकलेंगे। और भाई लोगों की समस्या होती है, बाहर जाना पड़ता है, भोजन की समस्या आती है। आप किसी शाकाहारी भोजनालय से भोजन लेंगे, जैन भोजनालय भी होते हैं लहसुन प्याज के बिना, वैष्णव ढाबे भी होते हैं। भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा फिर लेंगे। क्योंकि नहीं तो भाई लोग बहुत परेशान होते हैं, 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हम अब खाने का क्या करें। तो इमरजेंसी में इस तरह किया जा सकता, रोज नहीं, इमरजेंसी में कभी आवश्यकता ही पड़ गई तो आप ऐसे ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वहीं का भोजन खाना है, अब कहीं तो इंतजाम हो जाता है पर कहीं नहीं होता, तो उन्हें बता भी दो ऐसा भोजन आप खाएंगे तो उसका बुरा असर जीवन पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत आनंद लेना इधर भट्टी का, और यहाँ से जाने के बाद यहीं पर अपने पुरुषार्थ का कुछ प्लान बना के जाना। अब हम यहाँ से जाकर ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, 5 पॉइंट का प्लान, लेकिन प्लान ऐसा हो जो रोज किया जा सके। यहाँ बहुत नशा चढ़ गया, प्लान बनाया, बहुत सो लिए हैं, कल से 2 बजे उठा करेंगे, 2 ही दिन उठेंगे बस, फिर 6 बजे उठेंगे, ऐसा प्लान नहीं बनाना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल जो प्रैक्टिकल किया जा सके, जो आप कर सकते हैं। हर एक का अलग अलग प्लान, हर एक का जीवन अलग है ना, स्थिति परिस्थिति घर बार सब अलग अलग है, उसको ध्यान में रखते हुए सिंपल सहज प्लानिंग कर लेना। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का, कितनी सुंदर विधियां है ना, आप सबको तपस्या की मिली नी, कहते ना जितनी अच्छी होगी तपस्या उतनी खत्म होंगी समस्याएं। घर घर को मंदिर कैसे बनाना है, सम्मान में कैसे रहना है, ये सभी विधियां हम सबको मिली, इसलिए भ्राता जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओम शांति।
ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।